अब उसको देख करके गोपियां तड़पने लगती हैं।
बंसीबट में जब वो जाती हैं, नहीं जाती, जाना बंद कर दिया, उसको देखने से एक टीस पैदा होती है उनके हृदय में, वो सब बातें पुरानी याद आती हैं। वो नहीं जान देखती, नंदगांव से बंसीबट को देख करके तड़फने लगती हैं, आंख बंद कर लेती हैं, ऐसी वहां की स्थिति हो गई। कृष्ण जब वहां से आए अपने गुरु आश्रम से, तो एक दिन जमुना के किनारे खड़े हैं और जमुना की तरफ से वृंदावन की तरफ में देखा, उत्तर में, ओह गोपियां सब तड़प रही होंगी, मैया की क्या दशा हो गई याद आई, और वो अपने घर के छत के ऊपर में चले गए और एकांत में रोने लग गए बड़े जोर से, डकार डकार करके गोपियों के लिए। गोपियों का रोना तो सब देखते हैं और एक दूसरे को सांत्वना दे देती हैं, राधिका को सांत्वना देने वाले हजारों गोपियां हैं, किंतु कृष्ण को कौन सांत्वना देने वाला, कोई सांत्वना देने वाला नहीं, इसलिए डकर डकर करके रो रहे हैं निर्जन में जो कोई देखे नहीं, उनका दर्द समझने वाला कोई ब्रज वहां मथुरापुरी में नहीं है। सोचा जे किससे बात करूं, हमको कौन सांत्वना देगा, ठीक है यदि उद्धव आता तो उसको ब्रज में भेजता, वो जाता हम जहां पर हमने प्रेम का पाठ पढ़ा, जिस स्कूल में जहां पर की प्रिंसिपल राधिका हैं प्रेम की और ललिता विशाखा उसकी प्रोफेसर हैं, तो ये वहां जाकर के हम अपने प्रेम को का पाठ इनको पढ़ाता कोई, तो वो यदि लौट करके आता तो दो एक बातें मैं करता, न था किसे बात करूं। इतने में उद्धव जी कृष्ण को खोजते हुए इधर उधर देखा, लोगों से पूछा, पूछ करके फिर पता चला जो ऊपर में बैठे हैं, तो ऊपर में गए, देखा जो कृष्ण रो रहे हैं बड़े जोर से। उद्धव को देखते हैं, उद्धव जी का हाथ अपने हाथों में लेकर के और तड़फ करके रोने लग गए। उद्धव जी ने पूछा, भाई तुम आज इतने रो क्यों रहे, बात क्या है? तो मुझे गोपियों की याद आ रही, पिता और माता की मुझे याद आ रही, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं चाहता हूं कि अभी पंख हमारे लग जाते उड़ करके मैं गोपियों के पास में, माता पिता के पास में पहुंच जाता, सखाओं के साथ में पहुंच जाता, वृंदावन में पहुंच जाता, किंतु मैं कैसे जा सकता, मैं जा नहीं सकता, बड़ी भारी विपत्ति है, जाने से गोपियों का दुख और बढ़ जाता है, कोटि गुण बढ़ जाता है, इसलिए ट्राई टू हियर डोंट डू हियर एंड देयर, देन माय माइंड इज डाइवर्टेड हियर एंड देयर, only here or sleep down, go and sleep। और उस समय में उद्धव जी को वो कहने लगे रोते हुए, भाई देखो हमारे प्रेम में हमारे माता पिता विवश होकर के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैया तो सुनते हैं जंधी हो गई, पिताजी घर से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं कभी तो रात में निकलते हैं, जो कोई देख ना ले, यशोदा जी से मुख नहीं दिखलाते, क्यों, प्रतिज्ञा करके आए थे जो तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूं मथुरा, वहां से ले आऊंगा, तो बेटे को ला नहीं सके, मैं नहीं ला सका, इसलिए मुख नहीं दिखलाते, केवल रोते हैं, वो भी अंधे होने लायक हो गए हैं, भोजन नहीं करते, घर में रसोई भी नहीं बनती, जैसे कल बतलाया था हड़िया औंधी हुई पड़ी हुई है, मकर से जाल लगा दिए हैं चूल्हे के ऊपर में, आजकल जैसा रसोई का सिस्टम नहीं था, चूल्हे पर बनते थे सब, अंगीठी वो लकड़ी या कंडे से मीठी मीठी रसोई बनती थी, आजकल कोई टेस्ट नहीं, तो वो किसके लिए बनाए, कौन बनाए, घर में कौन खाएगा, कृष्ण रहते तो उनके लिए, दधि मंथन भी नहीं होता, इसलिए कुछ भी नहीं होता। उद्धव जी ने देखा जी तो ये तो यहाँ बड़ा मुश्किल है, तो अभी मैं पहुंचे नहीं। तो कृष्ण बतला रहे हैं ऐसी दशा है, तुम जाओ हमारी माता पिता को संतना देना, हमारी गैयां सब मर रही हैं, पिताजी को कहना जी हमारे गैयों की संभाल करें। जो काली गैया थी या और गैया थी, अब वो सभी विरह में रो रही हैं, ऐसा सुनते हैं कि वो मर भी रही हैं, बछड़े अब भी वैसे नहीं हैं। बहुत विचार करके फिर बोले जी देखो हमारे प्रेम की अवधि और विरह की अवधि गोपियों में है, माता पिता को तो सांत्वना देना किंतु उनको सांत्वना देना, गोपियों को सांत्वना देना बड़ा भारी कठिन है। तुम अपनी तरफ से कोई चेष्टा मत करना, हमने जो कहा है वो संदेश दूंगा, वही संदेश उनको बीच बीच में सुना देना, नहीं तो उनका विरह और भी व्याकुल हो जाएगा और बढ़ जाएगा प्रेम, इसलिए मत। और उन्होंने कुछ कुछ संदेश दिया, यदि इसे नहीं हो तो ये देना, इसे यदि वो नहीं उनका संतना हो तो ये देना, इस तरह से बार बार उनको बतलाया जे ये कहना ये कहना, पूरा सब तरह से समझा पढ़ा कर। गोपियों का कैसा जीवन है, केवल एक आशा से भी जीवित हो रही हैं कि आज न तो कल कृष्ण आएंगे जरूर, क्योंकि कृष्ण झूठे नहीं बोलते, झूठे बोल नहीं सकते, इसलिए जरूर आएंगे ही, क्योंकि हम लोगों की शपथ खा करके, तुम लोगों की शपथ है मैं जरूर आऊंगा, बस इसीलिए जीवन को धारण किए हुए हैं। तो अभी मर जाते किंतु मर क्यों नहीं रही, इसलिए नहीं मर रही कि कृष्ण आएंगे और हमें नहीं देखेंगे तो वो भी प्राण प्रत्याग कर देंगे, इसलिए वो भी मर नहीं रही, केवल इतना दुख कष्ट सह रही। राधिका जी ने पीछे एक बार संदेश दिया था, कृष्ण चले गए हमारी निद्रा भी चली गई, उसमें सो जाती तो हमारा दुख कुछ कम हो जाता, यहां तक कि मूर्छा एक सखी थी वो भी चली गई, इसलिए हम कैसे जीवन को धारण करें और मर भी नहीं पाती, यदि वो आएंगे और देखेंगे ये नहीं है तो वो भी मर जाएंगे, उनके दुख इतना उनको दुख होगा इसलिए मर भी नहीं पाती हूँ, इसलिए जा करके उनको समझाना वियोग की अवधि तक गोपियों में ही है, किसी प्रकार से अपने जीवन को धारण मात्र कर रही है, जगत में ऐसा प्रेम अभी देखा नहीं गया न सुना गया। सीता जी का भी प्रेम है राम के प्रति, किंतु राम के लिए वो पागल नहीं हो गए जैसे गोपियां हो गई, फिर हमें उन्होंने कटाया वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी ने, किंतु उनको राम ने दो पुत्र दे दिए थे इसलिए उनकी सांत्वना थी, और सांत्वना देने वाले वाल्मीकि जी थे, यहाँ पर कौन है गोपियों को सांत्वना दे, इसलिए तुम जाओ और जा करके उनको सांत्वना दो। सोने का रथ मंगवाया कंस वाला जो इनके पास में था, और उस पर उद्धव जी को कहा जी चढ़ करके जाना, जल्दी से पहुंच जाना, वहां से उतरे और उतर करके उद्धव को लेकर के रथ में बैठ जाओ, किंतु बैठ नहीं रहे, जब तक कृष्ण है तब तक कैसे बैठेंगे, इसलिए वो दोनों बातचीत करते हुए ब्रज की तरफ में आ रहे हैं, रास्ता बतलाया जे इधर से इधर से उधर से उधर से तुम जाना, सब प्रकार से बतला करके, तब कृष्ण ने देखा उद्धव जी ने देखा ये साथ नहीं छोड़ेंगे और हमको चलना है, अब शाम भी होने जा रही, इसलिए कृष्ण को प्रणाम किया, कृष्ण ने अपनी वैजयंती माला उनको दे दी, अपना दुपट्टा जो पीत होता है वो पीत भसन पीताम्बर वो कृष्ण के गले में उद्धव जी के गले में डाल दिया, माला भी बड़ी सुगंधित उसको भी उनको दे दिया, और उद्धव देखने में कृष्ण के समान ही श्यामले रंग के, ठीक कृष्ण के समान, इसलिए जल्दी से रथ में बैठ करके और चले। रथ जब तक नजर में आया कृष्ण खड़े रहे, उसकी धूली उड़ने लगी, उसकी धूली जब तक की उड़ती रही तब तक आसमान में वो कृष्ण चलते रहे, वहीं पर खड़े रहे। जब धूली भी समाप्त हो गई, रथ भी ओझल हो गया आंखों से, तब वहीं पर कृष्ण वहीं से लौटे किसी प्रकार से घर में अपने लौटे और उद्धव वहां पर पहुंचे। शाम हो गई, शाम हो गई जब उद्धव पहुंचे, तब तक गायें किसी प्रकार से चर करके लौट रही हैं और आकाश धूली से भर गया है। उसमें जब उद्धव आए उन्होंने देखा क्या, बड़ा सुहावना वृंदावन जो कृष्ण के समय में था, कृष्ण ने जोग माया के द्वारा अपने ब्रज का दर्शन कराया। कैसा, बछड़े फुदक रहे हैं, कैसे सफेद सफेद बड़ी बड़ी थनों वाली गायें, दूध से भरा हुआ जो कि 50-60 किलो दूध दे सकती हैं, थन भरे हुए, और वो धीरे धीरे चल रही हैं। चारों तरफ ब्रज में सुगंध छा रहा, पुष्प खिले हुए हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोयल कुहक रही, जमुना का पानी निर्मल रूप से बह रहा, भौरे फूलों पर गुंजार कर रहे, और देखा का ये सांड लोग परस्पर लड़ रहे हैं। इस प्रकार जैसे कृष्ण के समय में ब्रज था वैसा ही उन्होंने ब्रज को देखा, सभी बड़े सुखी, और क्षण मात्र में जोग माया का प्रभाव हट गया। अब देखा जो सभी विरह करते, वहां की भूमि वीरान पड़ी हुई है, पेड़ों में पुष्प नहीं खिल रहे, पक्षी नहीं गा रहे, इस प्रकार से सुनसान ब्रज को देखा, इस प्रकार से नंद बाबा के घर में आए। बच्चों ने खबर दी कि मथुरा से वही रथ आया है और उसमें एक आदमी आया है। कौन आया? नंद बाबा घर से बाहर आए, देखा ये उद्धव है, उद्धव को गले से लगाया, बेटा तुम आए हो, घर में ले गए और उनको पहले तो हाथ पैर धुला करके और कुछ खिलाएंगे, किंतु घर में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, मक्खन तो बनता नहीं जो मक्खन मिलेगा, छाछ है नहीं, संदेश खीर इत्यादि कुछ है नहीं, रसोई घर भी लिपि नहीं है, तो रसोई बने कहाँ, कौन बनाएगा? नंद बाबा कह नहीं सकते जो सोदा मैया से दूध जो कुछ बनाओ, और वो भी इस अवस्था में नहीं है जो बनाए। केवल सुना जो कृष्ण उद्धव आया है, सुनकर कहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उस समय में नंद बाबा ने एक ब्राह्मण को बुला करके कहा थोड़ा सा खीर बना करके लाओ। वो गया अपने घर में, दूध और चावल तो था, शक्कर घर में नहीं, वैसे ही बिना शक्कर का ही खीर बना करके लाया। नंद बाबा ने भोग दिया नारायण का और उनको खिलाया। खिलाने के बाद में जब सब ठीक ठाक हो गया तो पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा हमारा कन्हैया बेटा कैसा है, हमारा लाला कैसा है, किंतु इतना प्रेम उमड़ आया जो कृष्ण ये कह नहीं सके। आंखों आंख से बरसात जैसी वर्षा होने लग गई और हृदय एकदम विदीर्ण हो गया। जब ही वो कृष्ण कहना चाहे, लाला कहना चाहे, कन्हैया कहना चाहे, किंतु वो मुख से निकले नहीं, गला एकदम भराए गदगद हो जाए। बड़ी मुश्किल से बोला जी हमारा भैया वसुदेव ठीक है, कुशल से तो है। देखो वो अपने पापों से मारा गया, जो पापी व्यक्ति होता है उसको मारने के लिए कोई जरूरत नहीं होती, अपने पाप से वो ध्वंस हो जाता, तो उसके पाप ने उसको मारा। मारने के बाद में अब्रज में वहां मथुरा में शांति तो है। सुनते हैं कि यहाँ के जितने भी जादव लोग हैं यहाँ से भाग करके दूसरे दूसरे चले गए हैं कंस के अत्याचार से, तो अभी लौटे कि नहीं लौटे? करी करी एक डेढ़ महीना हो गया, 60 दिन वो वहां पर है गुरुकुल में 60 दिन, 60 दिन न 64 दिन, 64 दिन में 64 कलाएं, वो 64 दिन वहां थे। आने जाने में कुछ समय लगा और 4-5 दिन के बाद में गए उपनयन के बाद में, तो करीब करीब कितना दिन हो गया, 70-80 दिन। इसलिए वो पूछ रहे हैं, वो लोग लौट करके उन लोगों ने बुला लिया अपने संबंधी कुटुंबियों को जो भाग करके चले गए थे, वहां का कुशल तो है। सब पूछने के बाद में फिर वही याद आई जी, हमारा कन्हैया कैसा है, और ये कह करके फुट फुट करके रूम में। फिर कहते हैं कि देखो, मैं इस दुख को भूलने के लिए घर में जब रहता हूं तो कन्हैया उसके उसकी बंसी उसकी लकुटी यह सब दे करके और तड़प उठता हूँ उसको भूलने के लिए। ये घर का कोना कोना और रेणु रेणु कण कण कृष्ण की याद दिलाते हैं, इसलिए घर में मैं टिक नहीं पाता। भूलने के लिए गोवर्धन में जाता हूँ, गोवर्धन में कृष्ण के चरणों का चिन्ह और वहां की लताओं को और वृक्षों को देखता हूँ तो कृष्ण की लीलाएं याद आती हैं। वहां से छटपट करके भागता हूँ भूल जाऊं, जमुना के किनारे आता हूं पनघट को देख करके फिर वही याद आता। ये कह करके हा कृष्ण कह करके गिर गए। थोड़ी देर के बाद में उद्धव जी ने उनको उठाया तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं इनको क्या समझाऊं, क्या कहूं, यदि कोई कृष्ण के लिए एक बार भी रो दे, कृष्ण के लिए एक बार भी जिसके आंखों में आंसू आ गया उसका जीवन धन्य है। तो मैं कहूं क्या, ये आप बड़े सौभाग्यवान हैं ऐसे ही रोइए, तो संतना देना हुआ नहीं। और यदि कहूं जैसे रो मत, तो शास्त्र कहते उद्धव ऐसा गलती क्यों करता है, ऐसा रोना तो तुमको भी चाहिए, और सभी लोग ऐसा कृष्ण के लिए रोएं उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं कैसे कहूं जैसे रो मत, और कैसे कहूं जो रो, ये भी तो उचित नहीं। तो मैं आखिर में क्या कहूं, उनके शब्द को उसमें से एक भी शब्द नहीं निकला जो कहें, कुछ भी नहीं। बस अंत में यही बोले जो कहना उचित था, जगत में यदि किसी का जीवन सार्थक है तो तुम ही लोगों का, ब्रिजवासियों का जीवन ही सार्थक। कृष्ण को तुम लोग जो स्वयं पर ब्रह्म है, भगवान है, और उसको तुम लोग अपना बेटा मान कर रहे, लाड प्यार करते हो, शासन करते हो, अंगुली से तर्जन गर्जन करते हो, तरह तरह से चोर चोट्टा कहते हो, उस पर ब्रह्म को आप लोगों से कौन ऐसा जगत में सौभाग्यवान होगा। आप ही लोग संसार में, आप ही का जीवन सबसे साफ। इतना सुनते ही नंद बाबा फिर रोने लग गए डकर डकर और बोले, मैंने सोचा जैसे तुम कृष्ण के साथ में रह करके अब बुद्धिमान हो गया होगा, किंतु अभी तुम्हारे अकल के दांत भी नहीं टूटे, तनिक बुद्धि नहीं आई। अरे तुमने कौन विचार से ये बतलाया कि हम लोग सौभाग्यवान हैं? मैं तो देखता हूं कि जगत में यदि कोई दुखी है, दुर्भागा है, कौन है, मैं हूं। पहले तो मैंने जानता था जिसे कृष्ण हमारा बेटा है, अब आप तुम्हारे मुख से सुना कि वो तो परब्रह्म है, तो ऐसा दुर्भागा जो परब्रह्म हमारे घर में पुत्र के रूप में आया और उसका मैं लाड नहीं लगा सका, मैं उसको प्रेम नहीं कर सका, तो मैं योग्य पिता नहीं। अरे पिता तो जगत में एक ही था, वो कौन, महाराज दशरथ, जो पुत्र के बन चले जाने पर हाराम हाराम और हाराम कह करके बस प्राण को छोड़ दिया। मैं तो मर नहीं रहा, हमारे जैसा पत्थर का कलेजा किसका होगा जो अभी वियोग में मैं अभी भी अपने प्राणों को धारण कर रहा हूं। और ऐसा कह खूब रोने लगा। दर्ज ने कहा जिसे मैंने गलती किया जी, इससे कहा जो तुम सौभाग्यवान हो, सचमुच तो ये कह रहे हैं कृष्ण इनके पास नहीं रहे, चले गए कहां मथुरा में, तो सचमुच में ये दुर्भाग्य ही देखा दिख पड़ते हैं तो ये कहते हैं तो ये ठीक ही। किंतु दुर्भाग्य कैसे मैं कहूं जिनके लिए वसुदेव इतना नहीं रो सकते, देवकी नहीं रो सकती, उनके हृदय में इतना स्नेह प्यार अनुराग नहीं है सचमुच में ये धन। किंतु फिर भी ये जो करे ये झूठ तो बात नहीं। इसके बाद में उनको समझाने लगे कुछ जो कृष्ण ने संदेश दिया। इस प्रकार से सारी रात बीत गई, कोई भी नहीं सोया। सवेरा जब हुआ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उद्धव जी ने कहा जी जरा स्नान कर लूं, पासी में एक सरोवर जिसका नाम आजकल रख दिया है कृष्ण कुंड, नंदगांव के पास ही में नीचे में है जहां पर कुआं इत्यादि है, जब हम बरसाने से आते हैं बस स्टैंड के पास ही में है, तो वहीं पर स्नान किया। स्नान स्नान करके कुछ आन्हिक इत्यादि किया, भगवान का अपना ध्यान किया, उनका भगवान नारायण है उनका ध्यान किया, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा क्या, अरे बड़ा सुंदर कुंज यहाँ है और यहाँ पर लाखों कदम्ब के वृक्ष है जिसमें फूल एकदम खिले हैं, जिसमें भौरे गुंजार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर सुगंध चारों तरफ में फैल रहा है। और उसके अंदर में उन्होंने गोपियों को देखा जो कोई दूसरा नहीं देख सकता, भीतर में गोपियों को देखा और देख करके उनको वहीं से प्रणाम किया। इतने में देखा कि कुछ गोपियां आई और उद्धव को देख करके बातचीत करने लगी। उद्धव उसी कुंज की तरफ में बढ़ने लग गए जिधर में गोपियां गई। एक गोपी कहती है ये कौन है, कौन है ये? दूसरी गोपी कह रही है ओ ये मालूम होता है ये श्याम तो है किंतु श्याम नहीं है, श्याम है देखने में श्याम ही जैसा किंतु श्याम नहीं। जो गोपियां तमाल वृक्ष को देख करके कृष्ण समझ करके आलिंगन करती हैं, किंतु यहाँ उद्धव कृष्ण जैसे हो करके उनकी माला भी है पीताम्बर भी है रूप भी वैसा है किंतु उनको आलिंगन नहीं किया, प्रेम उनकी रक्षा करता है। इसलिए एक गोपी करी ये है श्याम किंतु श्याम नहीं। ओ एक दूसरी कहती है ये श्याम का दूत मालूम होता है, तो दूसरी कहते दूत किस लिए भेजे, दूत किस लिए आएगा, और तुम जानती नहीं है वो देखो तो ये रथ, तो हाँ तो यही तो रथ था जिसमें एक अक्रूर क्रूर आया और हम लोगों के प्रियतम को हर ले गया, प्राणों को हर ले गया, ये तो वही रथ है, तो ये उसी रथ में बैठ करके आया कृष्ण का दूत। मतलब क्या, कृष्ण ने उस काले ने जो अंतर बाहर काला है बड़ा धोखाबाज है, उसने अपने दूत को सोने के रथ में भेजा, जिसका दूत सोने के रथ में चलता है वो कैसा मथुरा का राजा कैसा होगा ये दिखलाने के लिए, मैं गैया का चरवाहा अब नहीं रहा, अब तो मैं हो गया क्या, मैं इस समय जादवों का राजा हूं जादवपति हूं, यह दिखलाने के लिए मानो कृष्ण ने भेजा। उद्धव कहते कि हाय हाय मुझे ये सुनना था, मुझे रथ में नहीं आना चाहिए था, पृथ्वी फट जाती तो मैं उसके अंदर में समा जाता, बड़ी लज्जा की बात, इनको सांत्वना देने के लिए आया रथ पर आया बैठ करके और सज भज करके आया, ये तो बहुत गलती थी, उनकी बुद्धि एकदम चकरा गई। दूसरी गोपी है अच्छा ये बतलाओ तो ये दूत आया, ठीक है आया, किंतु यहां पर किस लिए आया, माता पिता के साथ में पुत्र का जो संबंध होता है वो संबंध होता है रक्त का, हम लोगों का जो संबंध है मानने के ऊपर में है, नहीं माना छूट गया तो वो छोड़ करके चला गया इसलिए हमारा संबंध तो खत्म, किंतु पुत्र यदि माता पिता को छोड़ करके भी जाता है किंतु उसके रक्त में पुत्र माता पिता का रक्त होता है इसलिए वो संबंध छूट नहीं सकता, वो छोड़ भी देता है जैसे हम उनके बाप बेटे मैं नहीं हूं तो भी ये संबंध नहीं जाएगा, जगत जानता है जगत जाहिर है, इसलिए माता पिता से संबंध तो छूट नहीं सकता, इसलिए हो सकता है कि कृष्ण ने इस दूत को भेजा हो जाओ माता पिता को संतना दे आओ। किंतु हमारे पास में किसने भेजा, क्या जरूरत है इसकी। उद्धव थे बड़े संकट में, ये सब सुनना था मुझको, इस रूप में नहीं आना चाहिए। किसी तरह से गोपियों के पास में निकट में पहुंचे, गोपियों ने उनसे पूछा, उद्धव एक बात पूछूं, तुम कृष्ण ही के दूत हो, क्योंकि हमारी नाक झूठी नहीं कर सकती। झूठी माने क्या, ये जो सुगंध आ रही है मालूम होता है उस फूल से जिसको कृष्ण ने धारण किया था, वो मालती माला, और उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें पहनाई होगी, नहीं तो कृष्ण की गंध कैसे आती। फूलों में वो सुगंध नहीं है जो कृष्ण के अंग में सुगंध है, इसलिए हम लोग पहचान गए तुम उन्हीं का दूत। अच्छा उद्धव एक बात बतलाओ, सोच समझ करके उत्तर देना। बात यह है कि प्रेम दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध प्रेम होता है, एक स्वार्थमय प्रेम होता है। वेश्याएं किसी योग्य व्यक्ति से, गुणी व्यक्ति से ही वो प्यार नहीं करती, उनको पैसा प्यारा होता है, इसलिए उस व्यक्ति का जितना पैसा जब तक है तब तक तो उसे प्यार करती है, बड़ी दिखलाती है प्यार, और जब सब कुछ ले लेती हैं, उसके पास में चूसने के लिए कोई नहीं होता तो उसे गले में हाथ दे करके, धक्का दे करके बाहर कर देती। ये तो नकली प्रेम है, असली प्रेम नहीं। और भी देख सुनो, वन जंगल में हिरण रहते हैं, यदि आग लग जाएगी, जंगल जल गया, तो हिरणे वहां पर फिर अब नहीं रहेंगे, पशु पक्षी छोड़ करके चले जाएंगे। जिस वृक्ष में पत्ते हैं, छाया है, फल है, उसमें तो पक्षी बैठेंगे, और यदि वो वृक्ष जल करके ठूठा हो गया और पत्ते भी सूख गए तो उसमें पक्षी कोई नहीं बैठेंगे, जाएंगे नहीं। एक पुरुष है, स्त्री को प्यार करता है अपने स्वार्थ के लिए, स्त्री कुरूप हो गई तो दूसरी स्त्री के पास जाएगा, यह नकली प्रेम है, उसका तलाक दे देता है। एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है गुरु के यहां पढ़ने के लिए, कब तक प्रेम है, जब तक कि गुरुजी कहता है, रोज जाता है, उनके चरण को छूता है, और पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद में सर्टिफिकेट मिल गया तो गुरुजी के पास में जाएगा, जाएगा, बस उतना ही तक जरूर। एक भिखमंगा भीख मांगने के लिए जाता है, वो राधे राधे या कुछ भी कहता है, कहता है ब्रज में, और जगह तो अपना भिक्षा दूसरे नाम से कुछ मांगता है, तो वो कब तक खड़ा रहता है, जब तक भिक्ष नहीं मिल जाती। आज यहां भीख मिल गई तो स्त्रियां या पुरुष लोग कहेंगे, जरा पंडित जी जरा और ठहर जाइए और कुछ हमको भगवान की कथाएं सुनाइए, और मुझे समय नहीं है, ये कह करके जल्दी से वहां से चला जाएगा। गुरु पुरोहित आएगा जहां दक्षिणा दे दी, फिर नहीं ठहरेगा, कहे मुझे बहुत सा काम है, जरा जाऊं, और जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी तब तक घर में रहेगा। ये जितने सब प्रेम की बातें हमने बतलाई, ये प्रेम है नकली। जो प्रेम नष्ट हो जाने का कारण भी उपस्थित होने पर जो और बढ़ता है उसको कहते हैं प्रेम। क्या कहा, जो प्रेम के नष्ट हो जाने का कारण भी उपस्थित हो तो और वो बढ़ जाता है, कमता नहीं है, उसको प्रेम कहते हैं। तो उद्धव हमारा प्रेम तो बड़ा निर्मल था, हमने स्वार्थवश कृष्ण को प्यार नहीं किया, और कृष्ण को भी हमने देखा, उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए हमसे प्रेम नहीं किया, दोनों का प्रेम निश्चल था, किंतु यह प्रेम टूट कैसे गया। उद्धव जी सिर खुजलाने लगे, कोई उत्तर नहीं, कभी सुना ही नहीं। उद्धव जी को धीरे 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 और थोड़ा सा गंभीर कुंज में, जहां पर कि घना घोर कुंज था, उसके अंदर मिले, देखा फूलों की सेज पर, कमलों के फूल की सेज पर एक सोने की पुतली सोई है, मरी है कि बची है इसको देखने के लिए रुई का फाहा लेकर के कोई सखी दे है। पर यहां छीन श्वास चल रहा है, अब ये मरने मरने को। उसी समय एक भौरा आया, भौरा माने कृष्ण ही भौरा का रूप धारण करने के लिए वहां है, और उसके चरणों के पास में वो गुंजार करने लग गया। राधा जी का चरण भी तो कमल के समान सुगंधित है, बस उसमें प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा, उसका मधुपान करेगा। उस समय राधिका जी ध्यानती अंग संगमम, कृष्ण की चिंता करने लगी और देखा ये मधुपुरी में गया है हमारा प्रियतम, और वहां जाकर के बिना स्त्रियों के साथ में रह नहीं सकता, बिना किशोरियों के रह नहीं सकता एक क्षण भी। जरूर वहां की जादुओं की पत्नियां बड़ी सुंदर सभ्य है ना, शहर की स्त्रियां बड़ी सुंदर होती हैं और गोरी होती हैं, यहाँ गांव स्त्रियां तो वन जंगल में रहती है ना, रसोई बनाना पड़ता है सब, और वहां की स्त्रियां बड़ी सुखी रहती हैं इसलिए बड़ी गोरी और बड़ी सुंदरी होती है। तो वहां पर हजारों वहां पर जादुओं की पत्नियां होंगी, उनके साथ में ये चिकनी चुपड़ी बातें बना रहा होगा, बस ऐसा ध्यान करते हुए कृष्ण का, और वो बिगड़ गई, क्रोध से भर गई। सोची जैसे वही अपना दूत भेजा है इसलिए मनाने के लिए हमें, जाओ कहना चाहे मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं तुम्हें याद करता हूं, तुम लोग क्यों क्रोध कर रही हो। तो उसमें मानो वो झंकार कर रहा है और वो कह रही है, इसी का नाम है भ्रमरगी। श्रीमद भागवत में एक उज्जवल नक्षत्र है ये भ्रमरगी, यदि निकाल दिया जाए तो बेकार हो जाएगा भागवत, गोपी गीत निकाल दिया जाए तो श्रीमद भागवत बेकार का हो जाएगा। ये पांच प्राण जैसे हैं ये रास पंच अध्याय, और ये एक मिनट, तो वो कह रही है जी हम भागो यहां से, हे मधु मधुपान करने वाला कहाँ से आया, मधुपुरी से आया, वहां पर एक मधु की बड़ी दुकान है, शराब की बड़ी दुकान है, उस मधु का पति कौन है, वही काला, और तुम भी काले, वो भी काला, और तुम मधुपान करके पागल होकर के यहाँ आया है, तुम अपवित्र होकर के, तुम हमारा पैर मत छुओ, हटो यहां से दूर भगो, और वो भन भन करता हुआ, अरे तू क्या मेरी बात नहीं सुनता, अपवित्र है, स्वामिनी जी आप मुझे अपवित्र बना रही हैं, मानो वो भाव नेत्र से कानों से ही सुन रही हैं, स्वामिनी जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपके प्रति बहुत अनुरक्त हैं, इसलिए मुझको बार बार भेजा और इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूं यह कहने के लिए, वे निर्दोष हैं, वो किसी स्त्री से तो बात ही नहीं करते हैं, सब समय तुम्हारी याद करते हैं, इसलिए आप लोग प्रसन्न हो, दूर हो जाए यहां से, पागल और अपवित्र, तुम्हारे गुल्फ में क्या लगाया है, मैं कुमकुम देखती हूँ, देखता हूँ ये कुमकुम कहां से आया तुम्हारे गुल्फों में, गुल्फ समझती है ना, उनके भौरों के जो कुछ केस होते हैं, कहां से लाया, ओ तुम कृष्ण के माला पर बैठा, और उस माला में गोपियों के साथ में जब उन्होंने मिला आलिंगन किया होगा तो गोपियों के अंगों का वह कुमकुम उस माला में लगी, और उस माला पर तू बैठा और उस माला का कुमकुम लेकर के तुम्हारे मूछे लाल हो रही हैं, भगो यहां से मूर्ख, जिसका दूत ही इतना मूर्ख, जो कैसे मानिनी को मनाया जाता है, किस वेश में आ जाता मालूम नहीं, तो उसका क्या होगा, वो ऐसा ही होगा, कुछ दिनों में ही ये बात फैलेगी और ज्यादा लोग ये छोड़ेंगे नहीं कि हमारी स्त्रियों के साथ में मिलता है, तो उसे उचित समुचित दंड देंगे, इसलिए जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। ये पहला श्लोक है भ्रमर गीत का, गौर प्रेमान, प्रेम में ऐसा प्रेम आया, इसको प्रेम वैचित्र कहते हैं, विचित्र प्रेम, गोपी पागल होकर के कृष्ण के प्रति समझ रही है ये कृष्ण पास ही में है शायद मान, और कृष्ण कहाँ वहां है, और ध्यान में करती हूँ उसके प्रति ओ हाथ से दिखला रही हैं, तर्जन कर रही हैं यहां से भगो, और उसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। यदि वो संबंध तोड़ सकता है तो हम संबंध क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, हम भी तोड़ देंगे। इस तरह से इसके 12-13 श्लोक हैं और इसका वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर किया गया है और हमारे सनातन गोस्वामी जी और विश्वनाथ चौधरी ठाकुर ने इस पर चारों पर और चांद लगाया, सोने में सुहागा लगा दिया, इतना सुंदर रूप से व्याख्या किया है जो कहीं विश्व में इसका जोड़ी। आप लोगों का भी जीवन सार्थक हो, इन्हीं कथाओं में रमिए और भगवान का भजन। बहुत प्रमाण अब भोग दे करके प्रसाद सबको दो। भोग लग गया, लगा दिया भोग, ठाकुर जी कहाँ हैं? बहुत अच्छे। और सबको बैठा करके नाउ यू कैन गो नो हॉट यू कैन गो नो नीड ऑफ वेटिंग हियर हरि कथा इज गॉन यू शुड ऑल्सो गो You came all to preach here. Oh, what, Prabhu? Bhishtadyumna and Ashram Maharaj all told me, they promised that we will go to Fiji to preach, distributing books. But actually, I'm saying that you are doing nothing.
I'm having program this morning in Ashram.
How many books has been distributed?
You
are waiting for going there to Australia, no? Very good.
Next year. Today I found out where the books are, so we will have them.
Yes, sir. You can find after your departure. No
harm. Itai Gaur Premanandi Hari Babu.
Thus ends the morning class in the House of Kantibai in Lautoka, Fiji on the 7th of February 2001. Hare Krishna.